चरणों में नमोज गुरु का सर्वत प्रार्थना करता हूँ कि आज के शोक घर पर अपने मंडल में प्रारंभित आध्यात्मिक प्रवचनों से हम सबको प्रकार करें परम पूज्य 108 समाता का किनारा है।
राग विज्ञा नमो ताहि जाते भये अरहंतादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोली भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। आज एक दिन और हमारे अपने जीवन का, जबकि हम अपने ही जीवन के बारे में थोड़ी देर बैठकर विचार करेंगे। क्षमताओं को जो हमारे भीतर छुपी हुई हैं उनको प्रकट करना, इसी का नाम धर्म है। अपने व्यक्तित्व को निखारना, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना, अपने ही जीवन का विकास करना धर्म का इतना ही उद्देश्य है। फिर चाहे वो क्षमा धर्म हो या कि मार्जो धर्म हो या आर्जो धर्म हो, आज चौथे दिन शौच धर्म है। ये सारे धर्म हमारे अपने जीवन को निखारने के लिए हैं, पवित्र बनाने के लिए हैं। और इन चारों धर्मों के नहीं होने में सहयोगी हमारी चार कषायें हैं। इन चारों कषायों को हमें दिशा देनी होगी। कषायें हमारा बिगाड़ न कर पाए, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। कषाय से रहित हमारा स्वभाव है, इस बात का भी हमें भीतर कहीं ना कहीं विश्वास रखना पड़ेगा। हमें इस बात का एहसास करना पड़ेगा। जिस दिन हम इन सब चीजों को अपनी मजबूरी मान लेते हैं या कि अपनी नियति मान लेते हैं, फिर इन चीजों से मुक्त होना आसान नहीं होता। कि हमारी कमजोरी है कि हम कषाय करते हैं। देखो तो कितना हमारे साथ मजा है कि गुस्सा करके हम सोचते हैं कि हम दूसरे पर थोड़ा सा हावी हो गए। देखो तो थोड़ा सा दूसरे के सामने अपने गले में माला डलवाकर सोचते हैं कि हम दूसरे से बड़े हो गए। देखो तो थोड़ी सी मायाचारी करके और हम अपने मन ही मन कितने खुश हो लेते हैं कि कैसा दूसरे को बुद्धू बनाया, हम उससे उससे एक कदम आगे निकल गए। और लोभ करके चीजों को इकट्ठा कर करके हम अपने को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हम इन कषायों के चलते कभी बलवान हो पाए हैं? कोई कषाय करके अगर बलवान हुआ होता तो शायद आज तक तो हमसे बलवान और कोई नहीं होता। अनंत बल को प्राप्त करने वाले भगवान इन कषायों से मुक्त हुए हैं तब अनंत बल को प्राप्त कर पाए। ये बात हमारे भीतर गहरे कहीं बहुत गहरे इस बात का एहसास होना चाहिए। सुचिता के कई मायने हैं। आज सुचिता या शौच धर्म पर अपन चर्चा करेंगे। वैसे पूजन में आज सत्य धर्म की भी पूजा शायद आपने करी होगी। तत्वार सूत्र जी के अनुसार उत्तम क्षमा मार्दो आर्जो शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणी धर्मा, ऐसा क्रम है। चारों कषायों के जाने पर ही सच्चाई जीवन में प्रकट होती है, इसलिए शायद ये क्रम भी रखा गया हो। जिन्होंने आज सत्य धर्म की पूजा कर ली है वे परेशान नहीं हो कि सुनना तो शौच धर्म के बारे में पढ़ रहा है, हमने तो पूजा सत्य धर्म की करी। सुचिता के मायने होता है निखालिश होना, एकदम खालिश, एकदम प्योर, विदाउट इंप्योरिटीज। ये निखालिश होना। इंप्योरिटीज कहां से आती हैं कभी हमने सोचा? हमारे अपने जीवन का निखालिश होना और हमारे जीवन में जो भी अपवित्रताएं आती हैं वे किस वजह से आती हैं? अगर अपवित्रता का कोई बड़े से बड़ा कारण है तो मैं स्वयं हूं। मैं और मेरापन जितना मुझे गंदा करता है उतना तो कोई और नहीं करता। ये जो पर पदार्थों को अपना मानने का मेरा अपनत्व का भाव है वो मुझे गंदा करता है, और ये जो मैं अपने स्वभाव को न समझ करके शरीर को अपना मान लेता हूं ये मुझे गंदा करता है। अगर भेद विज्ञान हो जाता है तब तो फिर निखालिस होने में देर थोड़ी लगती है। इस शरीर और आत्मा के बीच की कोई भेद रेखा जिसको मालूम हो जाती है वो व्यक्ति निखालिस होना शुरू कर देता है। बिना भेद विज्ञान के चाहे जितना कोई निर्लोभी हो जावे लेकिन वो अपने जीवन की उस ऊंचाई को नहीं पा सकता। कषायों को, चारों कषायों को वो अच्छे से अच्छी मंद कर सकता है, लेकिन अगर भेद विज्ञान नहीं है तो उसका कषायों को मंद करना कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। इसलिए आज पहली बात ये ध्यान में हमें रखनी होगी कि निखालिस होने के लिए और निखालिस होकर के जो भी इन धर्मों का आचरण करेगा कोई व्यक्ति जीवन को अपने ऊंचा उठा पाएगा, अपने व्यक्तित्व को निखार पाएगा। भेद विज्ञान के मायने क्या है? शरीर को शरीर समझना, आत्मा को आत्मा समझना, शरीर को शरीर समझना, इतना ही है भेद विज्ञान के मायने। लेकिन शरीर की दुर्गति करना या शरीर को संभालना इसके मायने भेद विज्ञान नहीं है। जो चीज जैसी है उसको वैसी समझना, उसे उतनी ही कीमत देना। एक रुपए का कागज चलता है ना, सिक्का भी चलता होगा। अब तो एक रुपए का नोट वोट कहीं देखने मुश्किल है, पांच से कम का क्या मिलता होगा देखने पर। उसको किसी बेटे के हाथ में दे दो जिसे नहीं मालूम कि आप इसे क्या कीमत देते हैं, वो तो थोड़ी देर देखेगा दाखेगा और फाड़ फूड़ करके उसकी चिंदी बना करके फेंक देगा। पर वो जैसे जैसे फाड़ेगा वैसे भीतर भीतर कुछ फटेगा। वो जो भीतर भीतर फटेगा वो तकलीफ देता है। ये बाहर का फटना अगर तकलीफ देता तो उस बेटे को भी देना चाहिए था। उस बेटे ने इस कागज के टुकड़े में कीमत डाली नहीं है, हमने कीमत डाली है, ना समझी में डाली है। और जब हम कीमत डाल देते हैं तो उसमें लाभ दिखाई पड़ता है और लोभ जागृत हो जाता है। हम हमने चीजों में अपने हाथ से कीमत डाली है। वो पत्थर का टुकड़ा जो जमीन के बहुत नीचे मिलता था, हमने पालिश वालिश कर कराकर अपनी तिजोरी में धर लिया और कहते कि कोई नूर है, करोड़ों रुपए का है। अच्छी बात है, कल तक तो वो पड़ा हुआ था जमीन के अंदर, उसने कभी अपनी कोई वैल्यू का विचार ही नहीं किया। हमने कीमत दी, इसलिए दी क्योंकि हम अपनी कीमत नहीं जान पाते हैं तो उसको दूसरी चीजों पर आरोपित करते चले जाते हैं। यहां से शुरू होता हमारा लोभ शुरू। और अगर हमने अपने जीवन को कीमत दी होती, अपने जीवन को ज्यादा कीमती माना होता, तो शायद और किसी चीज की कीमत हम उतनी तो नहीं करते कि अपनी जिंदगी जिसके लिए दांव पे लगाना पड़े। देखो तो व्यक्ति शरीर के पतित होने से व्यथित होता है और आत्मा निरंतर पतित हो जाती है फिर भी व्यथित नहीं होता। शरीर को थोड़ा सा भी धक्का पहुंच जाता है तो बहुत दुख होता है, और आत्मा को निरंतर धक्के खाना पड़ रहे हैं यहां संसार में, कभी उसको तकलीफ नहीं होती। जब तक ये भेद विज्ञान देह और आत्मा के बीच की कोई भेद रेखा और दोनों की तासीर नहीं मालूम पड़ेगी, और जब तक हम अपने से पृथक चीजों को कीमत देते रहेंगे, तब तक मानिएगा कि लोभ नाम की चीज जाने वाली नहीं है। आप चाहे जितना कुछ कर लीजिए, लोभार्ता कहां से है? हम चीजों में अपनापन डाल देते हैं, इसलिए उनके प्रति लोभ जागृत हो जाता। आपने कहीं कोई घटना सुनी होगी कि एक वृद्ध अपनी जीवन साथी के साथ चला जाता था रास्ते से, और रास्ते से क्या चला जाता था, दोनों इतने ज्यादा प्रबुद्ध थे, इतने ज्यादा समझदार थे, इतने ज्यादा भेद विज्ञान से युक्त थे कि शायद दुनिया की किसी चीज की चिंता नहीं करते थे। और वृद्ध आगे आगे चला जाता था, उसकी जीवन साथी वो वृद्धा मां पीछे पीछे आती थी। एक अदब हुआ करता था, एक रिस्पेक्ट हुआ करता था पहले, तो थोड़ी दूर आगे जाकर के उस वृद्ध ने देखा कि कुछ सोने के कलदार सिक्के पड़े हुए हैं। उसके मन में तुरंत आया कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो मुझे सोने से और धूल से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर आने वाली जो जीवन साथी है, हो सकता है कि उसके मन में चूंकि सोने के प्रति तो थोड़ा लगाव होता ही है, और अगर जागृत हो गया तो नाहक ये पता नहीं किसके सिक्के हैं और लालच आ जाएगा तो भले ही नहीं उठाएंगे पर मन तो खराब हो ही जाएगा। तो मन न खराब हो तो उसने धीरे से, जब तक कि वो जीवन साथी आए तब तक उसने जल्दी से जो है उस पर धूल डालने की कोशिश करी, पर इतनी दूर नहीं थी कि देख ना सके। उसने देख लिया, पास आकर के कहा कि क्या कर रहे थे? बोले कुछ नहीं। तो बोले देख लिया है मैंने, मैं तो सोचती थी तुम मेरे से दो कदम आगे हो, पर अभी तो तुम्हें सोना सोना दिखाई पड़ता है और उस पर धूल डाल रहे हो, तुम धूल पर धूल डाल रहे हो, मुझे तुम पर हंसी आती है। अब तुम सोने को अभी भी कीमत दे रहे हो, सोने को सोना मानना बिल्कुल जुदी चीज है, धूल को धूल मानना बिल्कुल जुदी चीज है, लेकिन सोने को धूल से अधिक कीमत देना ये तो कहीं ना कहीं अभी भेद विज्ञान में कमी है। तब तो लोभ जागृत हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए निखालिश वो है जो कि हर चीज की तासीर को ठीक ठीक समझता है और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता है, तब उस व्यक्ति को निखालिश होने में देर नहीं लगती है। एक सुचिता के मायने है चमकदार होना। किसी भी चीज को आप मांज गूंज के रख दीजिए, कितनी शाइनिंग आती उसमें से। अब जबकि हम उस सुचिता की बात कर रहे हैं जिससे कि शाइनिंग आनी चाहिए, तो हमें समझ लेना चाहिए कि जीवन कैसे चमकदार हो सकता है। उस सुचिता के द्वारा चमकदार हो सकता है। हमने तो बहुत कोशिश करी, बहुत चमकदार हमने कपड़े पहने, लेकिन हमारी चमक फिर भी नहीं बढ़ी। हमने बहुत शरीर को चमकदार बनाने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन फिर भी हमारे जीवन की चमक नहीं बढ़ी, तो बढ़ेगी कैसे? तन का क्या श्रृंगार सजाना, मन श्रृंगारो तो मैं जानू। अगर हमने मन को चमका लिया होता तो तो शायद हम चमकदार बन गए होते, शायद हमारा व्यक्तित्व एनलाइटेड हो गया होगा, दूसरे के जीवन के लिए भी रोशनी देने वाला हो गया होता। पर हम तो ऐसी गीली लकड़ी निकले कि जिसमें अगर आग भी लगे तो बिसूर बिसूर के जलती है, जलती बहुत देर तक है पर सब तरफ धुआं फैलाती है। हम उस तरह जीते, उस मशाल की तरह जीते जो दोनों सिरों पर जलती है, भले ही जल करके जल्दी नष्ट हो जाती है लेकिन सबको रोशन करके जाती है। ऐसा चमकदार होना यही सुचिता है। आपने कभी घटना सुनी हो शायद, हर चीज के पीछे कोई ना कोई घटना तो घटित होती है, सुनी होगी, बचपन में पढ़ी होगी कहीं, अभी याद आ जाएगी। हमारे साथ यही तो है, जो याद रखना चाहिए वही तो बार बार भूल जाते हैं, इसलिए तो बार बार यहां आना पड़ता कि भूल गए हमको फिर से बताओ। सो मत कर कुछ बात, पूर्ण कर दे वो कहानी जो शुरू की थी सुनानी, आदि जिसका हर निशा में अंत है अज्ञात। साथी सोना कर कुछ बात, रोज शाम दादी माँ से कहानी सुनने बैठ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे की माँ कहानी सुनाओ, और दादी माँ कहानी सुनाती है और सुनाते सुनाते कहानी पूरी नहीं हो पाती और बच्चों को तो झपकी लग जाती है, सो जाते हैं। आज तक हमने भी ऐसा ही किया है, अपने जीवन की कहानी हम कह तो देते हैं कि सुनाओ, चलो महाराज हमें दो बातें धर्म की सुनाओ, और सोते सुनते सुनते हम फिर सो जाते हैं, फिर दूसरे दिन उठ के आ जाते हैं, फिर से सुनाओ, वो तो कल हम बीच में ही सो गए थे। ऐसा हम पता नहीं अपने जीवन की पूरी कहानी को कब तक किस किस से सुनेंगे, और कभी पूरी नहीं हो पाएगी। ऐसी ही एक छोटी सी कहानी आपसे कह रहा हूं। साधु था, नहाने जाया करता था, रोज गंगा में नहाने जाया करता था, याद आया आपको? रोज नहाने जाता था, और एक वहीं पर व्यक्ति था जिसकी पता नहीं उस साधु से क्या बुराई थी, होगी कोई बुराई पुरानी। तो जैसे ही साधु नहा करके वापस लौटता था तो वो मुंह में पानी भर करके उस पे थूक कुल्ला कर देता था, तो साधु मुस्कुरा देता था, होना चाहिए था नाराज पर वो मुस्कुरा देता था, और मुस्कुरा के फिर गंगा में जाकर एक डुबकी लगा के फिर वापस लौटता था, और वो फिर जो है उसके ऊपर थूक देता था, कुल्ला कर देता था पानी का। एक दफे, दो दफे, चार दफे, 20 दफे, 25 दफे, कहते कि 100 दफे ऐसा। अब 100 दफे होने के बाद तो वही जो कि थूकता था, तकलीफ तो उसकी थी। हां, अगर अपन देखें तो कोई गुस्सा होता है तो उस पर दया करना चाहिए, बेचारा बहुत गरीब आदमी, देखो कितना अपने आप से तकलीफ पा रहा, खुद गुस्सा होकर के, अपने को क्या तकलीफ, अपने को गुस्सा होना नहीं होना वो अपने ऊपर है, पर ये सामने वाला गुस्सा हो करके और कितनी अपने लिए तकलीफ पैदा कर रहा है, ये बहुत गरीब आदमी है, इसको तो क्षमा कर देना चाहिए, बड़ी दया का पात्र है ये व्यक्ति। ऐसे ही उस साधु ने भी सोचा कि ये अपनी तकलीफ को अगर इस तरह कम कर रहा है तो कम कर लेने दो, लेकिन वो तो अपनी तकलीफ बढ़ा रहा था, और तकलीफ इतनी बड़ी कि 100 बार थूकने के बाद भी चैन नहीं मिला, तो चैन कब मिला जब साधु के चरणों में गिर गया। तब भी साधु ने धीरे से उठा करके उसे गले से लगा के कहा कि भैया तुमसे बड़ा उपकारी तो हमारा कोई नहीं होगा, हमने तो आज तक शरीर को 100-100 दफे नहा करके यही सोचा था कि हम पवित्र हो गए, पर आज तुमने हमारी उस पवित्रता की परीक्षा ले ली, हमें 100-100 बार तुमने गंगा में स्नान करवा के तो पवित्र बनाई है, पर हमारे मन में तुम्हारे प्रति कोई कलुषता नहीं आ पाई, ये हमारे जीवन की आज परीक्षा हो गई, अगर कलुषता आ जाती तब तो ये पवित्रता थोती हो जाती। ये जो मन की पवित्रता है, ये जो मन को मैला नहीं होने देते हैं बाह्य वातावरण से, कहिएगा वो हमारे जीवन को चमकदार बनाता है, वो है सुचिता। जब हमने अपने मन को किसी भी बाह्य वातावरण की प्रतिकूलता से मलिन नहीं होने दिया। और दूसरे मायने और हैं सुचिता के, सुचिता के मायने हैं भीग जाना, भीग जाना। सुचिता के मायने हैं निखालिश होना, पढ़ चुके हम। सुचिता के मायने हैं चमकदार होना, ये भी समझा हमने। सुचिता के मायने हैं कि भीग जाना। भीगते कब हैं हम? जब कोई हम पर उपकार करता है, कोई हमसे प्रेम से दो बातें कर लेता है, तो कैसा मन भीग जाता है, कैसा मन पवित्र हो जाता है। लेकिन हम लोगों के साथ मुश्किल थोड़ी सी ये है कि दूसरे से तो चाहते हैं कि वो हमसे प्रेम से बोले, हम भले ही उससे प्रेम से ना बोले, तो इतने अकेले से काम नहीं चलेगा। कहते हैं कि मन भीग जाना चाहिए, मन भीगा हुआ हो तब फिर जो वाणी निकलेगी, जो विचार आएंगे, जो शरीर की क्रिया होगी, सब पवित्र ही होगी। ऐसे सुचिता के मायने भीग जाना भी है। इसके पीछे भी एक घटना सुनाई देता हूं, शायद कहीं कहीं पड़े हो। उपगुप्त था एक और वासव दत्ता थी, भगवान महावीर स्वामी और के समय की बात है। बौद्ध साहित्य में इनका बहुत उल्लेख मिलता है, वासव दत्ता और उपगुप्त। वासव दत्ता का बहुत मन था कि उपगुप्त की जीवन साथी बने, पर उपगुप्त नहीं चाहता था कि वो इस तरह अपना जीवन गृहस्थ जीवन बिताए, वो तो साधु बनना चाहता था। वासव दत्ता ने कई बार उससे कहा कि हम दोनों मिलकर के एक अच्छा गृहस्थ जीवन जीने के लिए अगर तैयार हो आप तो हम तैयार हैं। लेकिन उपगुप्त तो कोई और चीज चाहता था। उसने कहा कि समय आने पर मैं तुम्हारा साथ दे सकूंगा, अभी तो नहीं दे सकूंगा। वासव दत्ता को समय का इंतजार करने का शायद वक्त नहीं था, समय नहीं था। वासव दत्ता बहुत सुंदर थी तो वो नगर वधू हो गई, सब उनके चाहने वाले थे, पर उपगुप्त ने नहीं चाहा। इस बात की पीड़ा वासव दत्ता के मन में तो रही आई। और एक दिन ऐसा हुआ कि 20 बरस की जिंदगी के बाद एक अंधेरी रात में उपगुप्त जंगल से जाते थे, तब किसी के कराहने की आवाज आई, तो अंधेरे में जाकर के टटोला कि किसी व्यक्ति का शरीर पड़ा हुआ है और कराह रहा है। उठाकर ले आए और रोशनी में देखा तो वो बेहोश शरीर किसी और का नहीं, वासव दत्ता का था। आंगन फांगन सेवा में जुट गए, जैसे तैसे करके होश में लाए। थोड़ा सा होश में आए तो अंधेरे में आंख खोल करके कहा कि देवता तुम हो कौन, ये मुझे बताओ, मुझे बचाने वाले। जो जिंदगी भर मेरे शरीर का उपयोग करते रहे, जो जिंदगी भर ये दम भरते रहे कि हम तुम्हें चाहते हैं, वे तो आज कोई भी नहीं है यहां पर। ये तुम कौन देवता हो, तुम मनुष्य तो नहीं हो, जो मुझे जब सबने बुरा मान करके फेंक दिया तब तुम मुझे संभालने वाले कौन हो। तब उपगुप्त ने धीरे से कहा कि स्वस्थ हो जाओ, मैंने कहा था ना कि समय आने पर मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, समय आ गया है। उन क्षणों में जबकि उपगुप्त सेवा करते थे वासव दत्ता की, तब वासव दत्ता का मन भीग गया था और उपगुप्त सेवा करते करते मन भीग गया था। क्या कभी हमने किसी दीन दुखी की सेवा करके अपने मन को थोड़ा सा भिगोया है, थोड़े से हम पवित्र हुए हैं? कभी हमने किसी के दुख में थोड़ी सी सहानुभूति प्रकट करके अपने मन की भीतर झांक करके मन की थोड़ी सी उज्ज्वलता को देखा है? अगर उसका स्वाद आया होगा आपके जीवन में तो आप उस सुचिता को पाने के लिए आज ही से संकल्पित हो जाएंगे कि अरे वाह, इतना मन उज्ज्वल हो जाता है उन क्षणों में जिन क्षणों में हम दूसरे के उपकार को स्वीकार करते हैं या दूसरे पर उपकार करते हैं। कितना मन प्रसन्न हो जाता है जब कोई बहुत स्निग्ध दृष्टि से हमें देख लेता है, जब कोई प्रेम से दो शब्द कह देता है तो मन कितना भीग जाता, कितना उज्ज्वल हो जाता, दीन दुनिया एक तरफ हो जाती है और वे क्षण कितने पवित्र हो जाते हैं। तो पवित्रता के मायने इतना व्यवहारिक सा बता रहा हूं। वो जो चीज शुद्ध थी वो तो मैंने निखालिश पहले आपसे कह दी, करना तो वही पड़ेगा, पर वहां तक पहुंचने के लिए ये सारी चीजें ये बहुत व्यवहारिक हैं, ये हमारे लिए क्रम क्रम से वहां तक ले जाएंगे, उस भेद विज्ञान तक ले जाएंगे। ये हमारे कुछ थोड़े से क्षण जो पवित्रता के क्षण हैं वे ही तो हमें सुध देंगे इस बात की कि हमें पाना तो वो है। तो दूसरे के ऊपर किया गया उपकार भी हमारे मन को, दूसरे की गई सेवा भी हमारे मन को बहुत पवित्र करती है। ये है पवित्रता। और पवित्रता के मायने तो हम जानते हैं कि शुद्ध होना भी पवित्रता है। और ये लोभ कौन सी चीज है जो कि इस पवित्रता को, इस शुद्ध होने को मुश्किल में डाले हुए है? तो क्या हम लोभ करना छोड़ देवे? नहीं, मैं नहीं कहूंगा कि आप लोभ करना छोड़ देवे, नहीं तो आप लोभ करना छोड़ देंगे तो ये हाल थोड़ी भर पाएगा। और मैं यहां तक कह के ऊपर से मेहनत करके यहां तक आऊंगा, ये कौन सा लोभ है जो कि यहां पर मुझे ले आता है, और ये कौन सा लोभ है जो कि आपको यहां तक ले आता है? ये लोभ बुरा नहीं है, इसलिए मैं इस लोभ को छोड़ने की बात थोड़ी करूंगा। जिस लोभ से लाभ मालूम पड़ता है संसार का, उस लोभ को छोड़ने की बात है। जिस लोभ से अपने आत्म कल्याण का लाभ मालूम पड़ता है, उस लोभ को छोड़ने की चर्चा अभी नहीं करेंगे। करेंगे फिर कभी करेंगे जब बहुत बड़े हो जाएंगे, थोड़े से और बड़े हो जाएंगे, अभी बहुत छोटे हैं हम सब, अभी बहुत छोटे हैं। बड़े होने की कोशिश हमारी है, बहुत विनम्र कोशिश होनी चाहिए। तो हमें अपने लोभ को दिशा दे देनी है, जो हमारा जीवन का कल्याण करे वो लोभ तो हमें जिंदा रखना है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। श्रद्धा भी एक तरह का लोभ ही है, ये जो सच्चा ज्ञान पाने का ये लोभ ही है, ये अपने जीवन को पवित्र बनाने का भी ये लोभ ही है। सब ये तो चलता है, दसवें गुण स्थान तक चलता है, सूक्ष्म लोभ बचा रहता है, आखिरी में यही कषाय जाती, बाकी सब कषाय तो पहले चली जाती, क्रोध मान माया सब चले जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म लोभ बहुत लास्ट में जाता है। वो जो अपने आत्म कल्याण के प्रति हमारी जागृति है, वो लोभ तो आखिरी समय तक रहेगा। उस लोभ को बनाए रखने का ही भाव बनाना चाहिए। उसी लोभ की वजह से तो ये मनुष्य पर्याय मिली है। मैं थोड़ी देर पहले बैठा बैठा सोच रहा था कि धरि हृदय संतोष करहूं तपस्या देह सो। अगर थोड़ा सा ये बात ध्यान में आ जाए कि धर हृदय संतोष, अब ये जीवन में थोड़ी, पहले जीवन में थोड़ा सा संतोष धरा होगा तब तो जी पर्याय मिली, क्योंकि मनुष्य पर्याय बिना संतोष के नहीं मिलती। अगर इतने ख्याल में आ जावे, आगे संतोष धारण करना है कि नहीं करना ये बहुत बात की बात है, पर मैंने कभी संतोष धारण किया होगा, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह किया होगा, बहुत संतोष पूर्वक जीवन दिया होगा, उसका फल है कि ये मनुष्य की पर्याय मुझे मिली है, और जिसमें मुझे ये बात करने का सौभाग्य मिला है कि संतोष धारण करना चाहिए। सम संतोष जले नैया, कार्तिक अनुप्रेक्षा का हिंदी करना चाहो तो यही है कि धरि हृदय संतोष। लेकिन इसके बाद वाली लाइन बहुत कीमती है। इतना तो हमने कर लिया कि धरि हृदय संतोष, तो ये पर्याय प्राप्त कर ली। अब इस पर्याय में कौन सा संतोष धारण करना है, ये तो संतोष धारण करने का फल मिल गया है कि धरि हृदय संतोष करहूं तपस्या देह सो। अब ये जो देह मिल गई है संतोष के परिणाम के वश मिल गई है, अब इससे तपस्या कर लो, नहीं तो फिर इसके बाद फिर ये पर्याय नहीं मिलने वाली। ये पर्याय संतोष धारण करके काय के लिए प्राप्त की थी, ताकि अपना कल्याण कर सके। तो हो तो क्या काम हमारा, आधा काम तो हमने कर ही लिया, अब आधा काम बाकी है कि अपने इस देह के द्वारा हम तपस्या करें। देह की तपस्या कैसी है भैया? देह को सताने का नाम तपस्या नहीं है, देह का ठीक ठीक उपयोग कर लेने का नाम तपस्या है, देह को बहुत सजग होकर के उपयोग करने का नाम तपस्या है। इस देह से कैसी तपस्या करें? उपवास बने तो उपवास करें। छोटे छोटे बच्चे दौड़ते भागते सुबह से आ जाते हैं, हमको तो आज एकासन करना है, हमको तो आज उपवास करना है, हमको तो आप ऐसा दे ही दीजिएगा। और मुझे याद आती है मंडी बामोरा की, ऐसे मौके पर कि जब मैं बैठ जाता था एक बजे से और चार बज जाते थे, और निपट ही नहीं पाता था कि अब भैया कल दूंगा व्रत, अब हो गया बहुत, 108 कायस्थ करूंगा, इतने ही नियम कर लिया था, वहां 108 लोगों को नियम दे पाऊंगा, एक दिन में 3 घंटे लग जाते थे। नौ बार नमोकार मंत्र मुझे भी करना कि आपका सफल हो जाए, आपके व्रत का 1/6 हिस्सा मैं फोकट में ले लेता हूं, आप मेरे से ले लेते हैं, आप तो करेंगे उपवास, में तो नहीं कर रहा हूं, एक आसन ही कर रहा हूं। देह की तपस्या के ये शुरुआत है, देह की तपस्या की, लेकिन इसके साथ साथ मन की निर्मलता बनी रहे, ये देह की तपस्या की कसौटी है। निराकुलता बनी रहे उतनी ही देह की तपस्या सार्थक है, और बहुत सारे लोग देह की तपस्या कर लेते हैं, लेकिन देह की तपस्या मन को मलिन करके देह की तपस्या नहीं करना, मन को उज्जवल करने के लिए ही देह की तपस्या करनी है। दूसरे के काम ये देह आ जाए, इससे बड़ी और देह की तपस्या क्या हो सकती है? कभी सोचा इस बारे में? दूसरे के काम आ गई मेरी देह, बहुत सांसारिक अर्थ मत लेना, नहीं तो बहुत मुश्किल पड़ेगा। दूसरे की विषय कषायों को बढ़ाने में तो बहुत काम आती है मेरी देह, लेकिन दूसरे के आत्म कल्याण में मेरी देह काम आ जाए और मेरे आत्म कल्याण में मेरी देह काम आ जाए, ये देह की तपस्या है। क्या ऐसी तपस्या हम नहीं कर सकते? हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमारा धन पैसा अपने विषय भोग के काम आ जाता है, दूसरे के विषय भोग के काम आ जाता है, लेकिन दूसरे के परमार्थ के काम में हमारा धन पैसा आ जाए तो वो लोभ हमारा बदल गया। इतना ही हमें कर लेना है। एक और बहुत छोटी सी घटना पर अपनी बात यहीं पर पूरी कर देता हूं। मैं आपसे कहूं बहुत छोटी छोटी चीजें मेरे जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं। बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान और बहुत बड़ी बड़ी तपस्या मुझे शायद प्रभावित नहीं करती। मुझे अगर कोई प्रभावित करता है तो श्रद्धा और प्रेम प्रभावित करता है। आपकी श्रद्धा, आपका स्नेह अगर किसी व्यक्ति का भी है वो हर एक को प्रभावित करता है। हमारी श्रद्धा के वशीभूत होकर के ही तो भगवान ने हमारे मंदिर में बैठना मंजूर किया है, वरना तो सिद्धालय में बैठे थे वो यहां आने वाले नहीं थे। और ये हमारा अनुराग ही तो है जो हम भागे भागे चले आते हैं, भगवान के चरणों में माथा झुकाते हैं, न वहां से कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी हम ऐसे लौटते हैं जैसे भगवान ने माथे पर हाथ रख दिया हो और आशीर्वाद दे दिया। कितना अद्भुत है हमारा ये व्यवहार, अपने लोभ को कम करने, पता नहीं कितना लोभ छोड़ करके यहां तक आए होंगे। ये एक छोटे से लोभ ने कि चार बातें धर्म की सुनूंगा, सैकड़ों लोभ छुड़ा दिए हैं। बस यही है हमारी तपस्या की शुरुआत, हम लोग को दिशा दे सकें, इस देह को दिशा दे सकें कि इससे दूसरे का उपकार हो और अपने आत्मा का उपकार हो, तब फिर हमने समझना कि देह की तपस्या कर ली। छोटा सा अर्थ मत लेना कि हमने कोई बहुत बड़ा व्रत नियम संयम इस देह से कर लिया है तो वही तपस्या है। अगर हम वो नहीं कर पाते हैं तो कम से कम इस देह के द्वारा दूसरे का उपकार तो कर ही सकते हैं। एक बेटा बीमार हो गया था और उसका पिता बहुत दुखी था, अब वो डॉक्टर के पास कैसे जाए क्योंकि उसके पैसा ही नहीं था, उसके पास डॉक्टर की फीस अदा करने के लायक पैसा नहीं था। तो बेटा तो बीमार था, वो तो सोचता था कि कोई अगर मुझे गिरवी रख ले वो और कुछ थोड़े से पैसे दे 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 तो भी मैं तैयार हूं। और पड़ोसी से इतनी बार पैसे मांग चुका था हर काम के लिए कि पड़ोसी के पास भी पैसे मांगने जाने का मन नहीं होता था। पर जब बेटे की वेदना नहीं देखी गई तो पड़ोसी के पास जाकर के एक बार फिर से ये सोचकर कि शायद ये आखिरी बार है, अब नहीं मांगूंगा, पर हाथ फैला दिया था और क्या कुछ नहीं पाया था, आंख से आंसू आ गए थे कि बेटा बेटा बीमार है। पड़ोसी ने भी एक बार उसकी तरफ देखा और जितने पैसे फीस के होते हैं उसने उसके हाथ पर रख दिए, वो चुपचाप वापिस आकर के और अब हंसी खुशी डॉक्टर के यहां जा रहा है। डॉक्टर ने भी बहुत उसकी माली हालत देख करके सोचा कि क्या देगा ये फीस वीस, कौन जाए तो टालने की कोशिश करे, पर उसने जब हाथ ही जोड़ लिए और हाथ पर पैसे दिखा दिए कि आपकी फीस के लायक मेरे पास है पैसे, डॉक्टर तैयार हो गया। रिक्शे में बैठ करके डॉक्टर ने कहा कि तू चल, मैं आता हूं रिक्शे में बैठ करके, और एक रिक्शे वाले को बुला करके जो है और उसमें बैठ गया और उस रिक्शे वाले से कहा कि देख मैं देख करके आता हूं, तू यहीं रुकना, मैं मुझे वापस भी भेज देना। वो रुक गया और ये डॉक्टर भीतर पहुंचा, तब तक तो देर हो चुकी थी। वो तो हाथ में पैसे दबाए हुए बैठा हुआ था चुपचाप कि डॉक्टर एक बार और देख लेता शायद सांस बाकी हो। और डॉक्टर ने जैसे ही देखा कि बेटा तो मर चुका है, डॉक्टर उल्टे पांव वापस लौटा, ये भागा भागा पीछे गया कि ये पैसे तो ले लो। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, पैसे किस बात के, दुख रह गया इस बात का कि मैं थोड़ी देर पहले आ जाता तो शायद तुम्हारे बेटे को बचा देता। और उसके हाथ में रखे पैसे छोड़ करके डॉक्टर रिक्शा में बैठ गया। जब रिक्शे में से अपने हॉस्पिटल में उतरा तो रिक्शे वाले को पैसे देना चाहे तो रिक्शे वाले ने लेने से इनकार कर दिया। मैं आपसे मन की पवित्रता की और देह की तपस्या की बात कर रहा हूं। एक ने देह छोड़ दी है और एक व्यक्ति उस देह के छोड़ने को देख करके अपने मन की पवित्रता को निरंतर बढ़ा रहा है। और कुछ नहीं इस कहानी में, इतनी है। जब उस रिक्शे वाले ने भी पैसे लेने से इनकार कर दिया तो डॉक्टर ने कहा कि अरे मैं तो बड़ा आदमी हूं, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, पर तू तो रोज रोज कमाता है, तू ऐसे नहीं लेगा तो कैसे काम चलेगा। तो रिक्शे वाले ने जवाब दिया कि मालिक आप बड़े आदमी हैं और मैं छोटा आदमी हूं, पर आदमी तो दोनों ही है, और आदमी अगर दोनों है तो आदमियत तो यही कहती है कि मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, डॉक्टर से उसने पैसे नहीं लिए और उधर जाकर के उसने सोचा कि पड़ोसी के पैसे काम तो आए नहीं, डॉक्टर ने लिए नहीं, वापिस जाकर के दे आऊं। तो पड़ोसी के पास जाकर के पैसे देने लगा तो पड़ोसी ने भी लेने से इनकार कर दिया। पड़ोसी ने मालूम क्या कहा उससे, बहुत मुश्किल में डाल देगी वो बात। पड़ोसी ने कहा कि जिस देह की रक्षा के लिए तुम मेरे से पैसे ले गए थे, उस देह की रक्षा नहीं कर पाए मेरे पैसे, तो ये सारे पैसे मैं छोड़ दूं। हम जिस देह की रक्षा के लिए, जिस अपने संसार की रक्षा के लिए ये सारे पैसे इकट्ठे करते हैं, ये लोभ हमारा, वो किस काम आया? आज हम बचा पाते हैं क्या किसी चीज को इस लोभ की वजह से? अब मैं इस लोभ को भी छोड़ता हूं। और उसने भी उस लोभ को छोड़ करके अपने मन को पवित्र कर लिया। काश ऐसा ही हम अपने मन को पवित्र करते, थोड़ा थोड़ा सा लोभ छोड़ करके और थोड़ा थोड़ा दूसरे का उपकार करके, तो हम भी बहुत एनलाइटेड, बहुत चमत्कार, बहुत निखालिश और बहुत शुद्ध और पवित्र हो गए होते। हम कोशिश करेंगे कि हम भी अपने जीवन की इस पवित्रता को प्राप्त करें। ऐसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि।
त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम।
उदक चंदन कांतुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप नयाल कई रावल मंगल कानन रवा कुले मम गए मुनि
के प्रकाश में को आपा पर वास में को मानु शिव कानी है अनुभवताए को जीवों के जताए देखो काहू न सताए देखो भव्य और आनी है
Shiva Padasa. भूमिभागः भद्रगणः कनवतं हरिणादिकोटिः Thank you.